फिर इसके लिए एक थोड़ा सा आइडियल किस्म का टाइम टेबल बनाते हैं। देखिए, इस्लाम ने हमें बहुत प्यारा स्केड्यूल बना के दिया कि एक मुस्लिम फैमिली का प्लानर कैसा होता है। वैसे तो ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किधर। मसलन मुस्लिम फैमिलीज कैसी होती हैं, अगर आप देखें तो सुबह 6 बजे से दिन शुरू करते हैं। मसलन सुबह 6 बजे फजर का वक्त है, बड़े बच्चों को उठा दीजिए, यानी 6-7 साल से बाद के जो बच्चे हैं बड़े उम्र, उनको उठाइए और प्रे टुगेदर एज फैमिली। देखिए, बच्चों को तो बस फन चाहिए होता है। अगर आप अपने घर के 7-8 साल के उम्र के बच्चों को उठा दें 6 से पहले, शौहर बीवी भी हैं और घर में नानी दादी भी होती हैं, चले हम बाहर रहते हैं, हमारे पास बहुत एक्सटेंडेड फैमिली ना भी हो, तो जो भी करीबी घर में सब लोग हैं उनके लिए ये प्लानर बना के आप लिख के लगा दीजिए। ठीक है, आप जाय नमाज कौन बचाएगा, आज कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी। अगर घर में एक दो बच्चा जैसे 10-12 साल की उम्र का भी है ना, तो बाप एक आधी नमाज दिन में उससे भी पढ़वाए, क्योंकि आप देखिए कि बाप ज़ाहिर बहुत अच्छी होगी तिलावत तजवीद भी, लेकिन कभी कभी बच्चों की भी बहुत अच्छी होती है। तो ख़ास तौर पे जो शाइन बच्चे हैं उनको आप वो नमाज़ें पढ़वा लीजिए जिसमें ऊंची नहीं बोलते, मतलब जोहर और असर, और जो बच्चा कॉन्फिडेंट है जिसकी तजवीद अच्छी है उससे आप फजर या मगरिब ईशा में से कोई पढ़ाएं। एक्टिविटी बनाइए, फिर आप देखिए 6 बजे से लेकर 7 के बिटवीन आप नमाज अदा कराएंगे, फिर कुरान पढ़ेंगे एक एक रुकू। आप ये भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ कि चलो बेटा, अब से लेकर पूरी छुट्टियां जो आपकी आ रही हैं, हम सूरत फातिहा से शुरू करके रोज कुरान का एक हिस्सा पढ़ेंगे और देखते हैं कि हम कितने अरसे में कुरान पूरा करेंगे। एक कर लीजिए गोल, चले अब सारों ने अपने अपने मुसहफ खोल लिए, जैसे वो मदरसों में नहीं होता हिफ्ज करते हैं लोग, छोटी छोटी आवाजें आती हैं, इन्ना कुरान अल्फजरी का ना मशहूदा। अल्लाह ताला कहते हैं कि फजर के वक्त का जो कुरान है ये पेश किया जाएगा, फरिश्तों की हाजिरी का वक्त होता है। और बहुत प्यारी हदीस है इसमें कि फजर और असर की नमाज के बाद फरिश्ते ड्यूटी बदलते हैं और अल्लाह ताला के पास जाते हैं और अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, तो वो कहते हैं जब गए थे तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, अब वापस आए हैं तो असर की नमाज पढ़ रहे हैं। और दूसरे इसको अपोजिट कहते हैं कि गए थे तो असर पढ़ रहे थे और आए हैं तो फजर पढ़ रहे थे, तो अल्लाह ताला कहते हैं गवाह रहना कि इनके इस बीच के गुनाहों को मैंने माफ़ कर दिया। प्यारी सी आवाज़ में कुरान पढ़ें, आप कहते हैं कि आवाज़ अच्छी नहीं, एक और भी टिप ले लीजिए, कोई मीडियम आवाज़ से पढ़ने वाले कारी साहब मिशारी हैं, सादुल गामदी बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि उनको फॉलो करना बहुत आसान है। एजुकेशनली पढ़ना तो सादुल गामदी और अबू बकर शात्री बड़ी मीठी और ठंडी आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। आप ऊंची आवाज़ से प्ले करें और सभी पढ़ रहे हैं अपने पीछे आप समेत, क्या मुश्किल है। देखिए, हम बच्चों के लिए भागते हैं, कहाँ बच्चों को पढ़वाऊँ, दो दो घंटे की ड्राइविंग से इधर से उधर जाते हैं। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आपके बच्चे इसी तरह से आपके साथ मामला करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल फिर इसी तरह आप कुछ मेमोराइजेशन का प्लान बना लीजिए, 30 पारे की आखिरी सूरतों से अगर शुरू करते हैं, कुछ की हुई हैं तो उसको रिवाइज करते जाइए, यानी गिव देम सम टास्क। फिर इसी तरह से आप एज अ फादर या एज अ मदर कोई एक स्लॉट या कोई एक सूरत तरतीब से तफसीर के साथ चंद जुमलों में सूरह फातिहा की तफसीर करवा दीजिए। बच्चे बहुत प्यार से सुनते हैं, शर्त यह है कि आप उनको प्यार से पढ़ाएं। जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है ना, इसमें बच्चों को भी मज़ा आता है। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल है कि बच्चे स्लीपी हैं, सोना चाह रहे हैं, फिर क्या करें। अब ये मुमकिन है ना कि नींद आ जाती है, या अगर यूज़ टू नहीं तो उनको थोड़ा थोड़ा मार्जिन दीजिए, उनको अट्रैक्शन दे। आज नाश्ता हलवा पूड़ी का होगा जो हमारे कल्चर में बड़ा फेमस है। अच्छा, आज सूरत पूरी की है तो आज हम सब मिलकर वाफल्स बनाएंगे, हम पैनकेक्स बनाएंगे, यानी इस तरीके से इस बिरु सा बिरु व रॉ बितु पे अमल कीजिए कि बच्चों को वाकई मज़ा आने लग जाए। फिर इसके बाद देखिए 8 बजे ब्रेकफास्ट टाइम है, पूरी फैमिली मिल के प्रिपेयर भी करे और क्लीन भी करेगी, और एक स्मॉल टास्क सबको दे दीजिए। चलो जी, आप टेबल पे बर्तन रखेंगी, माँ जो है वो अंडे फ्राई करेंगी, बाप जो है वो ब्रेड टोस्ट करेंगे जिसमें आधी जल जाएगी, कोई बात नहीं, जलेबी माँ खा लेगी। लेकिन इस तरीके से बच्चों को साथ लेकर चले, और उससे आप देखेंगे कि एक बॉन्ड बहुत प्यारा बनता है, आपकी घर में दोस्तियां बन जाएंगी। ये मासूम छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं आपके, इवन बड़े भी बच्चे हैं। अब आप कहेंगे आप तो छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, नहीं, बड़े बच्चे हैं तो फिर तो टास्क ही बहुत ईजी है। मैं तो एक एवरेज बात करती हूँ, जहाँ कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आपके पास प्लानर है 9 o'clock एक्सरसाइज टाइम। आप देखिए कि जब हम बाहर नहीं बहुत जाते तो हम थकने लगते हैं ना, बोर होने लगते हैं, गेटिंग बोर, और हमें इस तरीके से महसूस होता रहता है उस वक्त कि हम पता नहीं बिल्कुल ही बंद गए हैं और हमारे पाँव बंधे हुए और मज़े ही नहीं आ रहा और इंजॉयमेंट का नाम नहीं ज़िंदगी में रहता। तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, और एक्सरसाइज करने के लिए आपको मुझे कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं और घर में कोई जिम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मसलन आप देखिए आउटडोर्स कर लीजिए, वही बात है कि गार्डन में वॉक कीजिए, घर के बाहर चक्कर लगा लीजिए, और इंडोर्स में हैं तो आप पुशअप्स कर सकते हैं। मर्दों और लड़कों के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। घर में स्टेयर्स हैं तो उसके ऊपर चलें भी 100 100 दफ़ा, 100 टाइम जाना आना, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए। फिर उसके बाद देखिए जो 10 बजे का टाइम है, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हैं, ये बड़ी अहम है। अमूमन आप देखिए कि बच्चों के जब स्कूल खुले होते हैं तो इस वक्तों पे बच्चों को स्कूल के काम भी करने होते हैं, तो ये हर एक को उसका काम करने का वक्त दीजिए। स्कूल का काम है, आप अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क बुक्स हैं, फॉर्मल लेसन्स हैं, इन सब को करिए, और इसमें हर बच्चा हर बड़ा अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करे। 11 बजे का टाइम फ्री टाइम छोड़ दीजिए, जो मर्जी करें। थोड़ा सा वक्त घर में हर एक के पास ऐसा जरूर होना चाहिए कि वो कोई उसको गाइड ना करे, बस वो खुद जो करना चाहता है वो कर ले, ठीक है। और उसमें कोई बच्चे हैं तो लेगो से खेल सकते हैं, कुछ चीज़ें तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई पेंट कर सकते हैं। घर के बाहर खुली जगह में मैट डाल दीजिए तो बच्चे वहाँ बैठकर अपना दिल का शौक पूरा कर लें, जो भी इनको करता है। और इस तरीके से बच्चों को आप वहाँ करें कि वो खुद भी कुछ डिसाइड करें, यानी दिन का कुछ हिस्सा ऐसा रखा करें कि जिसमें बच्चे खुद भी कुछ करें, ठीक है। उसके बाद 12 बजे का टाइम लंच है, सब मिलकर लंच तैयार करेंगे और सब छोटे छोटे काम करेंगे और खाएं। ये बात लिख लीजिए, हमने हर खाने पे इकट्ठे जरूर होना है, ये रूटीन तोड़ दीजिए। ये बेस्ट डेज है मुख्तलिफ वक्तों में नाश्ते करने के। और वो कहेंगे वो जी सबके स्कूल जाने का और काम पे जाने का वक्त भी तो अलग ही होता है ना, इसलिए अब वो खत्म हो गया, इस चेन को ब्रेक कीजिए। आपका सारा दिन काम भी क्यों नहीं खत्म होता और इतने डिफरेंट खाने क्यों? एक खाना देखिए ना, आजकल लिमिटेड ग्रोसरीज घर में लाइए। ऐसे हालात में जब बहुत ज्यादा भी घर भर लिया जाता है तो वो फॉमिगेशन शुरू हो जाता है, घरों में जाते ही आपको कुछ स्मेल आएगी, पता चला प्याज गल गए, ये हुआ। कम रखिए, लिमिटेड खाने को रखिए और ज़ाया ना होने दीजिए। कोई चीज़ जो ज़ाया होने वाली है उसको पहले ही इस्तेमाल कर लीजिए या फ्रीज़र में डाल दीजिए, ताकि हिसाब नियमतों का देना आसान लगे, ठीक है। तो एक तरह का नाश्ता और एक तरह का लंच, बल्कि आप एक दिन बैठिए ना, सारे बैठकर पूरे हफ्ते का मेन्यू बनाएं, देखिएगा आपके बच्चों को वो एक आम सी चीज़, यानी मिसाल है कि आप वाफल्स बनाएंगी, वो भी इतने टेम्पटिंग लगेंगे कि वो तो परसों बनने हैं। ओ मामा, हम कब वफल्स बनाएंगे? हाँ बेटा, जरा जाकर देखिए टाइम टेबल में कब है, अभी तो 2 दिन पड़े हैं। वो 2 दिन का जो इंतजार है ना, वो उनके अंदर वफल्स की बहुत अहमियत रखेगा। आज सिर्फ दूध सीरियल चलेगा, चले भाई 5 कप सब टेबल पे रखेंगे, दूध की बॉटल लाएंगे, उसमें दूध डालिए, सीरियल का डब्बा रखा, बस इंजॉय कीजिए। आप क्यों कहते हैं कि बच्चों को हाई फाई कॉन्टिनेंटल 10 20 20 किस्म के खानों से ही खुश किया जाता है? अपनी छोटी छोटी बातों से बच्चों को खुश कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 1 बजे जोहर का टाइम है, सलात एज अ फैमिली, कुरान, इस्लामिक स्टडी आफ्टरवर्ड, हर नमाज के बाद 15 से 20 मिनट जरूर रखिए, जो नमाज का असर मौजूद रहे और आप उसके साथ बच्चों के साथ काम करते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 2 बजे का टाइम है क्वाइट टाइम, नैप टाइम। जब आप सुबह से उठे हैं और इतना प्रोडक्टिव डे गुजार रहे हैं ना, तो इस वक्त में थोड़ा सा रेस्ट करना होगा। आप सबको बता दीजिए कि अब ये वक्त हमारे रेस्ट के, बच्चे भी सोएंगे, आप भी सोएंगे, मामा पापा भी रिलैक्स करेंगे। अपने आप को उस वक्त इस तरह का बना के पेश कीजिए कि गोया कि ये रात का वक्त है, और आप देखेंगे 1 घंटा भी अगर इस तरह होगा तो आपके उस वक्त घर में सबको बताइए। और ये कब होगा? जब सब एक प्लानर के साथ चल रहे हैं। फिर 3 बजे का टाइम सबको उठाएंगे आप कि चलिए जी अब 3 बज रहे हैं, जहर है कि जोहर अब पढ़कर सोए थे, असर अभी होने वाली है। इसमें फिर बच्चे रिलैक्स्ड होकर खेल सकते हैं अपने क्रियोन्स के साथ, जिसमें भी उनको मजा आता है। कोई क्रिएटिविटी उनको दे दीजिए, कोई ऐसी चीज जिससे वो कुछ बनाकर दिखाते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से इन सारी चीजों में लेके निकलना है कि वो घर को एक रिजॉर्ट भी समझे, फ्रेंडशिप सर्कल भी है, और हर वक्त कोई हॉस्टल वाली कैफियत भी नहीं कि ये नहीं करना और अम्मी अबू सर पे ही सवार हो गए। कभी आप भी रिलैक्स तो कभी वो भी रिलैक्स। 4 बजे असर का टाइम है, फिर नमाज मिलके पढ़िए, फिर 5 बजे डिनर प्रेप होगा, फिर इसमें सबके सब मशवरा लीजिए क्या करना है, और इस तरह मगरिब की नमाज के बाद डिनर लीजिए, और उसके बाद का वक्त जो है वो आप अच्छे तरीके से मैनेज करें। यानी ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया गया है, आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसमें बहुत चेंजेस और भी कर सकते हैं। और फिर आप देखिए कि हमारे बच्चों को हमसे खाने, कपड़े, जूते ही नहीं चाहिए होते। ये एक बहुत अहम बात बताने वाली हूँ, और वो क्या है कि हमारे बच्चों को हमसे कुछ इमोशनलिज्म और कुछ इफेक्शन चाहिए होता है। तो ये आपके सामने एक लिस्ट है, मुसलमान घराने के लिए मंसूबा बंदी की मिसाल है, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू प्लानर्स, मम्मीज चेकलिस्ट। अब आप एक मम्मी है ना, माँ है तो है ना आप, तो ज़रा एक चेकलिस्ट तो बनाइए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम माएँ इतनी मसरूफ़ होती हैं कई चीज़ों में कि हमें समझ ही नहीं आती। ये देखिए आपके पास संडे से लेकर सैटरडे तक का प्लानर है, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, नीचे क्यूब्स हैं, स्माइल्ड टू माई चाइल्ड। क्या आप अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराई? नहीं मुस्कुराई तो मुस्कुराइए, और इसके अंदर चेकलिस्ट में चेक लगाइए कि हाँ आज मैं अपने बच्चे को देख के मुस्कुराई थी। और देखिए बच्चे के, अब बच्चों को देखकर मुस्कुराए, छोटे बच्चों को देखकर तो हम हर वक्त ही मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन बड़ों को भी देख के मुस्कुराइए, ठीक है। तो ये पूरे हफ्ते में चेक कीजिए, और अगर किसी दिन मौका नहीं मिला तो उसको क्रॉस कीजिए, फिर आपको फील होगा कि वो दिन आपका सैड डे होगा। हग माई चाइल्ड 5 टाइम्स, अपने बच्चों को दिन में 5 बार हग देना। मुझे बताइए कि बच्चे तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि हम घर से बाहर जाएं, जिनको घर से इतना प्यार मिलने लग गया। फिर इसी तरह आप देखिए, टॉट माई चाइल्ड समथिंग न्यू, अपने बच्चे को कोई नई चीज़ सिखाइए। और देखिए आपने ही सिखाना है, बेस्ट डेज है इनको सिखा लें। मैं तो रश करती हूँ उन दिनों में जबकि बच्चे बाहर के माहौल से कट ऑफ हों, क्योंकि हम बड़ी भी बातें अच्छी सिखाएं ना, फिर भी बच्चे बाहर की कोई बात सीख ही आते हैं, ना चाहते हुए भी माहौल भी बाहर जैसा होता है उसको आप जानते हैं। ये दिन आपके अपने बच्चों को जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे लेके बैठती है ना चीज़ों को, ये दिन है, तो उनको अच्छी अच्छी स्किल सिखाइए। फिर प्लेड विद माई चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ कुछ ना कुछ खेलें, तो इधर चेक लगाइए। सेट एंड लिसन टू माई चाइल्ड, ये बड़ा अहम है। देखिए हम कहते हैं ना हम अपने बच्चों को बहुत टाइम देते हैं, नहीं वो तो वो आपको टाइम दे रहे हैं। मसलन अगर आप खाना खिला रही हैं या पढ़ा रही हैं, तो वो तो बच्चा आपको टाइम दे रहा है। बच्चे को अनडिवाइडेड टाइम दीजिए, रिलैक्स्ड बातें, दिल की बातें, दोस्ती वाला अंदाज। यकीन करें आपके बच्चे फोन से खेलना ही भूल जाएंगे इन दिनों में। तो बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनके छोटे छोटे मसले सुनिए। फिर इसी तरह लुक्ड इन टू माई किड आइज़, बच्चों की आंखों में आंखें डाल कर देखें, आपको अंदर बहुत कुछ दिखेगा। मोहब्बत की खातिर अगर आप ऐसा करके देखेंगे ना, तो आप इसको वाकई फील करेंगे। फिर इसी तरह रीड टू माई चाइल्ड, कुछ अच्छी सी चीज़ अपने बच्चों को पढ़कर सुना दें। शेयर्ड कोर्स, कुकिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग वगैरह वगैरह, यानी कोई ना कोई काम शेयर कीजिए। कुकीज़ मिलके बना लीं किसी दिन, केक बना लिया, कभी हेल्दी चीज़ें बना लीं, फ्रूट चाट बना ली, आलू चने बना लिए, इस तरह की चीज़ें। फिर इस तरह प्रेड विद माई चाइल्ड, ये तो दिन में 5 बार चेक करना चाहिए। फिर इसी तरह डिस्कस्ड एन आर्टिकल ऑफ फेथ, हदीस वगैरह, यानी नबी सल्लम की कोई एक छोटी सी हदीस बच्चों से शेयर कर लें, कुरान की कोई आयत, कोई दुआ सिखा दें। कॉम्प्लीमेंटेड टू माई चाइल्ड, अपने बच्चे की तारीफ भी करें, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, वेरी नाइस, वेल बिहेव, वेल डन। स्टार्स दीजिए अपने बच्चों को। स्कूलों में जो कुछ लेते थे वो इधर से मिल जाएगा तो वो डिप्रेस भी नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। इसके बरक्स अगर घर का माहौल आप एक अजुर्दा सा बना दें और एक हॉस्पिटल का माहौल लगे, और ये भी बीमार और खांसी और बुखार और ये तो वो, तो बच्चे भी घर से भागना चाहेंगे। फिर इसी तरह यूज़ द मैजिक वर्ड्स, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैजिक वर्ड्स तो नहीं, यानी कोई ऐसे अच्छे अच्छे लफ्ज़ बोलिए कि जिसकी वजह से आपके बच्चे जो हैं वो इस सारी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया गया है, बाकी मुझे यकीन है आप इससे बहुत अच्छा करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि प्लानर तो हमने बना लिए, हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्लान, इन मंसूबों पर, इन प्लान्स पर अमल कैसे करवाएं। अमल कराना भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। देखिए ना, ये बातें आपके जहन की तरह हैं तो आप अकेले ही करेंगे, अगर आप बच्चों को साथ लेकर चलेंगे तो इसके लिए फिर आपको कैसे करना है। अब चंद टिप्स इस पे लेते हैं, किस तरीके से बच्चों को इंजॉय कराएं। पहली चीज़ देखिए कि फाइंड गुड रिसोर्सेस, अच्छे असबाब तलाश करें बच्चों की एज के मुताबिक, अप्रोप्रिएट टू देयर एज। वो चीज़ें ढूंढिए जिसमें उनको मज़ा आए, फन एक्टिविटीज़ हो। ज़ाहिर है बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत खुश्क बातों से तो नहीं खुश होंगे ना, तो कुछ फन भी हो। फिर इसी तरह बोझ ना महसूस हो, नॉट ओवर बर्डन हो। फिर इसी तरह से सर्च एंड प्रिपेयर इट अहेड ऑफ टाइम, वक्त से पहले तैयारी करें। बिल्कुल जैसे स्कूल में टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या कराना है, एक दिन पहले तैयारी करके आती है ना, तो आपके पास कल जो आपने करना कराना है उसकी तैयारी आज से मौजूद हो। तो हर बच्चे को उसकी एज के मुताबिक रखें। फिर सेकंड थिंग देखिए, गिव देम अथॉरिटी, जिम्मेदारी का एहसास दिलवाइए, थोड़ी सी मर्जी करने दीजिए। कुछ माएँ बहुत ज़्यादा हुक्म देने वाली होती हैं, ये करो, कह दिया, सीधे हो जाओ, फिर कहते हमारे बच्चे हमारे पास बैठते नहीं हैं। भैया आप घर में क्यों मास्टर साहब बन रहे हैं, आप प्रिंसिपल क्यों बन रही हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए बच्चों को। ठीक है, बस एक तरीका कार के आना चाहिए, कुछ टास्क दीजिए उनको, असाइन टास्क टू देम, काम कर दें, फिर घर के कामों में मदद करें। आप घर में सफाई का काम करते हैं, बच्चों से काम लीजिए। वैक्यूम तो करना ही मर्दों को चाहिए, लड़कों को और बापों को। हैवी काम मर्द करेंगे, लाइट काम माएँ करेंगी। अगर एक माँ ही सारा दिन सफाई करती रहेगी तो घर वालों को एहसास भी नहीं होगा कि ये मुश्किल काम है, और जब मर्दों ने किया होगा सफाई का काम तो देखिएगा कि बच्चों को फैलाने भी नहीं देंगे। फिर इसी तरह से यंगर सिबलिंग्स जो हैं उनकी हेल्प करना, मतलब आप अपने बड़े बच्चों को बताइए, यानी मिसाल है घर में दो छोटे बच्चे हैं और दो बड़े हैं, तो आप दोनों बड़ों में से एक एक को साइन कर दें कि ये तुम नंबर एक वाले की टेक केयर किया करो, और दूसरे को तुम उसकी, खाना खाते हुए तुम इसके साथ बैठा करो, तुम उसके साथ बैठा करो। यकीन करें अक्लमंद माँ बाप खुद कुछ नहीं करते, वो एंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को और बच्चों से सारे काम लेते हैं। फिर इसी तरह असाइन प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स दीजिए उनको कि जो काम उन्होंने करने हैं, और प्रोजेक्ट ये छोटे छोटे ही होंगे ना, लेकिन आप फील करेंगे कि इस तरीके से वो इन प्रोजेक्ट्स को जब करेंगे तो उनको उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगी। फिर इसी तरह एक और बहुत ही प्यारा काम जो स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होने के लिए आज के दौर में ज़रूरी है, वो क्या है, मेक योर हाउस अ मस्जिद, अपने घरों को मस्जिदें बनाइए। वजलू बुयूतकुन किबला, हजरत मूसा की कौम को अल्लाह ने यह हुक्म दिया था, जब बाहर की दुनिया में कुछ मसाइल आए तो घरों की मस्जिदें बना लो। कैसे, मसलन अपने घर को मस्जिद बनाना है तो क्या तरीका है, सब घर वालों की नमाज की जगमात के लिए एक कमरा सेट कर लीजिए। देखिए, सारे घर में ही नमाज हो सकती है, इसमें नो प्रॉब्लम, लेकिन एक फीलिंग देने के लिए, एक प्रायोरिटी देने के लिए, जब घर में और सब कुछ है तो मस्जिद क्यों नहीं, या जगह, वहाँ का माहौल, स्पिरिचुअलिटी, क्लीनलीनेस, खुशबू, वहाँ की रूहानियत, बहुत सामान ना हो उधर, बिल्कुल प्लेन सिंपल हो, तो ऐसा एक कोना सेट कीजिए जहाँ नमाज अदा की जाए। फिर इस तरह टाइम टेबल के मुताबिक नमाज जमात का मुकर्रर कर लें और सब घर वाले इकट्ठे नमाज पढ़ें। क्लॉक भी मौजूद है तो अजान घर में हो उस वक़्त जो सही टाइम है। और इसी तरह अगर किसी बीमारी की वजह से कोई अलग रहे तो वो अपनी नमाज अलग-अलग कमरे में भी पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि घर के माहौल को स्पिरिचुअल बनाइए। और जब घर में अजान की आवाज़ आएगी, सुबह शाम की अजान आवाज़ आनी चाहिए घर से। अमेरिका में तो आम तौर पे ही देखा था मैंने ये चीज़, बड़े बड़े घर हैं माशाल्लाह, और उन्होंने घरों के अंदर पूरा साउंड सिस्टम लगाया होता है, रूफ में और कमरों में, हर कमरे के अंदर, बल्कि आप खोलना चाहें तो खोल लें, जैसे मस्जिदों में साउंड सिस्टम्स होते हैं, इस तरह छोटे छोटे यूनिट्स घरों में लगे हुए हैं, आपके पूरे घर में आवाज़ आती है। कितना अच्छा लगे सुबह की आवाज़ें सब घरों में आने लगे, नमाज की, अजान की, तिलावत की, तो इस तरीके से कीजिए। फिर इसी तरह से एक और चीज़ जो अभी आपको शायद ज़्यादा लग रहा होगा ये सब कुछ, लेकिन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि समझदारी से करेंगे ना तो अच्छी लगेगी। हफ्ते के सब दिनों में से कुछ दिन बांट सकते हैं, वीकेंड या वीकडेज का फ़र्क रख लें, या फ्राइडे को होली डे के नाम पे कर लें, और वो कह के एक दिन ख़ास तौर पे इंक्रीज योर इस्लामिक रिसोर्सेज एंड नॉलेज, इस्लामी इल्म और असबाब में इजाफा कीजिए। मसलन नमाज के बाद कुछ वक्त इस्लामी दर्स हो, सूरतें हिफ्ज़ करना, इल्म सीखना, बुक रीडिंग का टाइम हो, हर एक को एक एक बुक चूज़ करवा लीजिए और हर एक अपनी पढ़ रहा है, फिर बाद में उसकी शेयरिंग्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, आपने क्या सीखा, मैंने ये सीखा। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो लैंग्वेज भी आप अपने कंफर्टेबल फील करें उसका कोई लेक्चर ऑनलाइन सुनिए, घरों कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ लेक्चर्स लाइव आते हैं, वो मिलके सुने। लाइव लेक्चर सुनने से बहुत स्पिरिचुअलिटी आती है, चाहे थोड़ी देर बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, लेकिन मैंने देखा रिकॉर्डिंग से वो बात नहीं बनती जो कि लाइवली उस वक्त है। मतलब आप देखें ना कि बात करने वाले को खांसी आई तो सब अलर्ट हो गए कि ओहो इस वक्त इनको खांसी आ रही है, अब वो रिकॉर्डिंग में खांसी सुनेंगे तो पता नहीं अब आ रही है, इस वक्त उनका क्या हाल है। यानी एक क्लोजनेस बनती है, एक बॉन्ड बनने लगता है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आप ये काम भी कर सकते हैं अपने लिए कि इनक्रीज इन इबादा एंड मेक दुआ। जब हम स्पिरिचुअली डाउन होते हैं ना तो हमें अपनी इबादत बढ़ानी चाहिए और अल्लाह हमें इसकी तौफीक भी दे। दुआओं में इजाफा कीजिए, इबादत का वक्त बढ़ाइए, बिस्तर पे जल्दी पहुंचिए, तहज्जुद के वक्त उठें, नमाज के बाद सब घर वालों के लिए दुआएं करें, वक्त मुकरर करें, मसनून सुबह शाम के अज़कार रोज़ाना पढ़ें। यानी अगर आप अपने बच्चों को इसमें नहीं भी इन्वॉल्व करेंगे ना, आपको करता देख कर, आपको पढ़ता देख कर वो भी इसी के ख्वाहिशमंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए क्वालिटी टाइम विद द फैमिली, घर वालों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारें, सोशल मीडिया पर वक्त गुजारने का एक ख़ास मिनिमम सा टाइम रख लीजिए, बच्चे और बड़े टीवी और कंप्यूटर फ़ोन पर कम वक्त गुजारें, कुछ बुक्स पढ़िए, हमारा कल्चर पढ़ने का नहीं रहा, और आज भी जो लोग पढ़ते हैं ना उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेट आए ना आए, कोई मेहमान आए ना आए, बल्कि वो तो और फोकस्ड हैं। बुक रीडिंग इज़ अ ब्लेसिंग, अच्छी किताबें पढ़ें, पैगंबरों की किताबें, सहाबा की स्टोरीज, बच्चों को ऑनलाइन से डाउनलोड कर दीजिए, सहाबा की स्टोरीज, इसी तरह से ईमान बूस्टर्स, हिस्ट्री, सीरा। फिर इसी तरह कुछ वक्त लाइवली बातें भी करें, डिस्कशन भी करें, बिल्कुल मशीन की तरह वक्त ना गुजारें बल्कि एक दूसरे के साथ दुख सुख का वक्त गुजारें। फिर इसी तरह अपना भी ख्याल रखें, अपना, गिव योर सेल्फ ग्रेस, काम के बाद कुछ आराम करें, स्मॉल सेशंस करिए स्पिरिचुअल लर्निंग के, कुछ वक्त दीनी इल्म हासिल करें, रूहानी वक्त हो। यानी आपको भी हक है कि आप भी रिलैक्स रहो, और घर वालों का फ़र्ज़ बनता है कि घर की खातून को थोड़ा रिलैक्स करें। अब देखिए, वो एक दिन औरत जरा से इधर से उधर हो जाए या बिस्तर पे ही चली जाए तो सारा घर उलट हो जाता है। पहले तो अपनी जिंदगी में इस तरह सेटल डाउन कीजिए कि आपके इधर उधर होने से कोई फर्क ना पड़े। घर वालों की तरबियत कर दीजिए। और दूसरी ये बात है कि अपनी अहमियत दिलवाइए। बच्चों को बताओ कि इस वक्त माँ आराम कर रही हैं, या आपकी कोई क्लास चल रही है जिसमें बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चे को पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए माँ को। दूसरे बच्चों को लेकर अलग बैठे। जिस तरह आप अपने बच्चों को तवज्जो देंगी ना, इस तरह वो भी फिर आपको तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से आप देखिए कि बच्चे को स्कूल की पढ़ाई से एक दिन छुट्टी करने दें, कुछ भी नहीं होगा, कोई आपके बच्चे का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। आजकल तो वैसे ही जुम्मा हफ्ता इतवार एक ही बने हुए हैं ना, लेकिन एक दिन कोई स्कूल की बात नहीं करनी। बच्चों को ये भी एहसास दिलाइए कि ये ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ठीक है। फिर इसी तरह से चंद बातें और, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम लास्ट पोर्शन पे चलेंगे। और वो क्या है कि बी रेडी फॉर इंटरप्शन, मुदाखलत के लिए तैयार रहे। आपने तो पूरा प्लानर बना लिया, आपने तो बहुत कुछ करना चाहा, ये भी सोचा वो भी, लेकिन बच्चे इंटरप्ट करते हैं। बच्चे तो नहीं आपकी तरह बिल्कुल चुप करके चल पड़ेंगे जो आप कहेंगे, तो बी रेडी। तमाम काम जो प्लान किए थे उसके मुताबिक नहीं भी कर सके तो सब्र कीजिए। इसी तरह स्टे फोकस्ड, मुकम्मल तवज्जो काम पर रखें। देखिए, प्लानर बनाने का ये नहीं मतलब होता कि एक एक मिनट उस पर आप चलेंगे। हाँ, उससे कम अज कम आप इधर उधर होने से बच जाते हैं। रवैया मुस्बत रखिए। एक काम तो माएँ लिख लें, मूड खराब नहीं करना। और बाप ने भी घर में चीखना नहीं है, कहाँ जाएंगे बच्चे अगर आप चीखेंगे तो, और माँ शाउट कर रही है तो बच्चा किधर जाएगा। आपने अपने घर को रिहैबिटेशन होम बनाना है, तो नेगेटिविटी अपने घर से खिड़की में से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। फिर इसी तरह अगर एक दिन कुछ मुश्किल पेश आए तो प्लान के मुताबिक वक्त गुजारने की कोशिश करें, यानी स्टिक टू प्लान। वन बैड डे डजंट मीन्स एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं है ये। कोशिश करें, एक दिन नहीं प्लान कर सके तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। और याद रखिए कि एक चीज तो कभी ना भूलें, और वो है लव एंड अफेक्शन, प्यार और मोहब्बत। शोहर बीवी का एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार, भाई बहनों का एक दूसरे से प्यार, बच्चों का माँ बाप के साथ प्यार। जितनी मोहब्बत और कुर्बत बढ़ेगी, आपस के ताल्लुकात बेहतरीन होंगे। आप जितना अपना बॉन्ड क्लोज से क्लोज फील करेंगे, उतना एक दूसरे के लिए दिलों में जगह आएगी। शो योर फैमिली लव एंड अफेक्शन। और इसके लिए कोई बहुत महंगे फूल खरीदने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए कोई बहुत गिफ्ट देने लेने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए आपको प्यार करने की जरूरत होती है। मांगा करें अल्लाह से कि अल्लाह हमारे दिलों में प्यार डाल दे। अल्लाह मुअल्लिफ बैना कुलूबिना, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युनिन व जालना लिलमुत्तकीना इमामा। और एक आखिरी बात, वो क्या है, डोंट लूज योर एनर्जी, अपनी तवानाई बरकरार रखें। यानी लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप योर एनर्जी लेवल्स हाई। और उसके लिए ज़रूरी है कि स्टे हेल्दी, सेहत का ख्याल रखिए, मुतवाजन खाना खाएं, जिस्मानी वर्जिश और मुनासिब नींद का इख्तमाम करें। अगर आप जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो आप कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, अपने बच्चे भी नहीं अच्छे लगते जब तबीयत ख़राब होती है। साफ़ सुथरे रहें, घर का हर बंदा रोज़ शावर ले, साफ़ सुथरे सिंपल प्लेन कपड़े चेंज कीजिए, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं भी हैं तो आप उसको हल्का सा सोप लगाकर धो लीजिए, इससे फ्रेशनेस होती है। और इसी तरह से अपनी ओन लर्निंग पे तवज्जो दीजिए। आप चाहती हैं अपने बच्चों को सिखाएं, तो आपको खुद भी सीखना पड़ेगा। मैक्सिमाइज ब्रेन पावर, बच्चे में इल्म की अहमियत और ख़ास तौर पर दीन के इल्म की अहमियत वाजे करें, दिमागी सलाहियतों में इजाफे की कोशिश करें, और आपकी कोशिशों से जो ना हो सके उसको दुआओं से ले लीजिए कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन व जालना लिलमुत्तकीना इमामा। के अल्लाह हमारे घर वालों को, शोहरों को और बीवियों को, और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। अब आप देखिए कि ये तो वो चंद बातें हैं जो हमने आइडियल हालात में की हैं, जो कि होनी चाहिए। और इतना कुछ पढ़ना, लिखना, स्केड्यूल करना, जरा सा माजी पे नजर डालें। पहले का दौर था कि माएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी। तो एक आर्टिकल आपसे शेयर करती हूँ, जैसे है वैसे ही करती हूँ। काश आज भी माएं अनपढ़ होती। ये अंबर शाहिद हैं, वो लिखती हैं। इन्हीं के लफ्ज़ हैं, पूरा ही पढ़ देती हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हमें अब अपने लिए एक जनरल गाइडलाइन मिलेगी। लिखती हैं कि आज मैंने अपने कालम का जो उन्वान तजवीज़ किया है वो बहुत अजीब है, और इतनी बड़ी बात इतने वसूख से कहना आसान नहीं, क्योंकि मैं खुद भी आला तालीम याफ्ता हूँ, और ये सब बातें जो कहने जा रही हूँ, हो सकता है कि मेरी कई बहनें मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन मौजूदा हालात और नई नस्ल को सामने देखकर मुझे तो यूं ही लगता है कि काश आज भी माएं अनपढ़ होती। हमारी माएं, जिन्होंने कभी फेसबुक देखी थी ना यूट्यूब, लेकिन इन्हें मालूम था कि घर वालों की सेहत का ख्याल किस तरह रखना है। हमारी माओं को ये किसने बताया था कि काले चने, लाल लोबिया, बीफ, मक्खन वाली रोटी, चाटी की लस्सी, पाए बोंग, हमें किस तनासुब से देना है, यानी बच्चों को क्या चीज़ कितनी देनी है। मजाल है कभी हम थके हुए या निढाल हुए हों। ये भी जानती थी कि बच्चों को फ्रीजर में रखी हुई चीजें नहीं खिलानी, इससे बीमारियां होती हैं। हमेशा ताज़ा कबाब, ताज़ा खाना, वो तो अनपढ़ थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा तो दारोमदार ही फ्रोजन पर है। तो फिर हम समझदार हैं कि वो अनपढ़ माएं। मौजूदा दौर में माहरीन बताते हैं कि जो बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते, किस तरह इनका मैदा अल्सर का शिकार होता है, और इनमें कुव्वत मुदाफियत कमज़ोर हो जाती है। लेकिन माएँ औलाद के हाथों इतनी मजबूर कि वो जो मर्जी करे, खाए ना खाए, इस तरह खाली पेट स्कूल कॉलेज जाकर कैंटीन से कोक पी ली या चिप्स का पैकेट खा लिया, चलो जी नाश्ता ख़त्म। हमारे ज़माने में तो माँ टींडे भी पकाती थी, तो खाते वक्त इतने गुस्से से देखती थी कि इसमें गोश्त नज़र आने लगता था। आजकल की माएँ बच्चा खाना ना खाए तो 50 ऑप्शन देती हैं। अच्छा चलो फ्राइज बना देती हूँ, चलो बर्गर ले लो, लेकिन हमारी माएँ कहती थी खाना खाओ या जूता, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। कल ही इशफाक अहमद मरहूम की एक बात नज़र से गुजरी, कहते हैं कि आज अगर बच्चे के हाथ से नवाला गिर जाए तो माँ कहती है रहने दो, इसे मत खाओ, जाकर हाथ धो लो, जरासीम लग जाएंगे। जबकि पहले हमसे शाही टुकड़े का नवाला भी गिर जाता तो माँ कहती कि बेटा रिस्क है, उठाओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लो, क्योंकि इन्हें जरासीम से ज्यादा अल्लाह की नाराजगी का खौफ होता था। हमारी माएँ माहिरे गजाइयात होने के साथ साथ बेहतरीन माहिरे नफ्सियात भी थीं। वो चेहरा देखकर दिल की हालत का अंदाज़ा लगा लेती थीं। बेटा हो या बेटी, ऐसी अच्छी तरबियत के कोई मिसाल नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि किसी के भी 8 या 10 से कम बच्चे नहीं थे, मगर कभी किसी की जुर्रत नहीं कि माँ बाप के आगे ऊंची आवाज़ में बात कर सके। बच्चियों को कम उम्र में ही दुपट्टा ओढ़ना, गैरों से फासला रखना सिखा दिया जाता था। माँ तो ये भी सिखा देती थी कि बैठते वक्त टांगे किस तरह रखनी है, दुपट्टा कैसे ओढ़ना है, लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी माओं को कुछ कहा जाए तो फौरन जवाब आता है, अभी बच्ची है। माएँ घरदारी सिखा देती थी और बातों बातों में ससुराल में रहने के तौर तरीके भी। किसी के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, सास ससुर की खिदमत करनी है, शोहर का एहतराम करना है, रोज़ रोज़ मैके नहीं आना, वगैरह वगैरह। ये वो नसीहतें थीं, यानी अमूमन ये बातें जो कही जाती थी ये आज बहुत कम हो गई। ये वो नसीहतें हैं जो माँ अपनी बेटी को करती थी, और यही वजह है कि शायद ही कोई तलाक का वाकया पेश आता हो। सब लड़कियां अपने घरों में शाद आबाद रहती थी, फैमिली सिस्टम मजबूत होने की वजह से बच्चों की अखलाकी तरबियत बहुत उम्दा थी। हमारी अनपढ़ माओं की मेकअप किट में भी बस एक मेहंदी, सुर्खी पाउडर या एक दंधसा होता था, जिसका खर्च 2 रुपए से भी कम था। और आज माएँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैठी कितने कितने घंटे लाइव मेकअप सीख रही होती हैं। इनको ये भी खबर नहीं होती कि इनके बच्चे इस वक्त मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त की अनपढ़ माँ में थी, वो अपनी औलाद की हिफाजत। वो तो एक नज़र में पहचान लेती थी कि सामने वाले की नज़र कैसी है। किसी की जरूरत नहीं थी कि गलत नज़र डाल सके। तो इस दौर में कितने वाकयात थे जो किसी ने सुने हो जिनसी तशद्दुद के। रिश्तों का एहतराम, मेहमानों की तवाज़ो, सब्रो तहम्मुल, नमाज़, रोज़ा, कुरान। स्कूल का काम कौन सी चीज़ है जो माँ नहीं सिखाती थी? अब ज़रा गौर करें कि आजकल की पढ़ी लिखी माँ इन में से कोई एक काम भी कर रही है, और ये मानना पड़ेगा कि हम पढ़ी लिखी माएँ इस मामले में नाकाम हैं। गुज़श्ता रोज़ मैंने फेसबुक पर डे केयर सेंटर की 4-5 वीडियोस देखी, जिसमें देखा जा सकता है कि वहाँ बच्चों से कितना ज़ालिमाना सलूक किया जाता है। मेरी तो रूह ही कांप उठी। भाई, एक पढ़ी लिखी माँ ही बर्दाश्त कर सकती है, अनपढ़ होती तो कभी ना होने देती। पहले तो बच्चे 5-6 साल के बाद ही स्कूल दाखिल कराए जाते थे, और इब्तदाई तरबियत माँ की गोद में हुआ करती थी। अब 2-2.5 साल का बच्चा ही माँ बाप से दूर कर दिया जाता है। इस मादा परस्ती के दौर ने औलाद को माँ बाप से कितना दूर कर दिया है कि एक घर में रहते हुए इन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि औलाद क्या कर रही है। टिकटॉक स्टार्स 16 साला दानियाल की 5 दोस्तों समेत मौत का वाकया हो, या चलती ट्रेन के सामने शौकिया सेल्फी लेने वाले 2 दोस्तों की हलाकत, नौजवानों में रोज बरोज बढ़ती जिनसी बेराहरवी हो, या खुदकुशी का रुझान, इन सब के पीछे सबसे वाजे एक ही उनसर है, और वो है माँ बाप की अदम तवज्जही, यानी माँ बाप तवज्जो नहीं देते बच्चों को। बस ये हालात देखती हूँ तो दिल कुड़ता है, और सोचती हूँ काश मैं भी अनपढ़, तंग नज़र और दिखिया नुसी होती, क्योंकि अगर तालीम से ये शौर मिलता है तो फिर ये तो निरी तबाही है। इस तहरीर से हरगिज़ ये नतीजा अखज़ न किया जाए कि मैं तालीम के खिलाफ हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि हमने तालीम को सिर्फ डिग्री तक महदूद कर दिया है, और अमल का पहलू बहुत कम है। दूसरा, तालीम के साथ साथ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली इकदार की पासदारी बहुत मानी रखती है। अगर औरत तालीम याफ्ता होने के साथ इन रिवायात की अमीन भी हों जिन पर अमल करके हमारी माओ ने बेहतरीन नस्ल को परवान चढ़ाया, तो यकीनन रिवायात और तालीम का इम्तिजाज एक कामयाब माशरे का जामिन होगा। मेरी कौम की माओ से दरख्वास्त है कि मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, अभी भी वक्त है, आप चाहें तो इसे संवार सकती हैं। तो ये था एक आर्टिकल जिसमें जो बात आपको सही लगी वो वाकई सही थी कि माएँ बहुत पढ़ी लिखी ना भी हों, लेकिन अपनी औलाद से और अपने शोहरों से मोहब्बत करने वालियाँ हों तो यकीनन खैर लेकर आती हैं। ऐसी माएँ ऐसी नस्लें पैदा करती हैं, परवान चढ़ाती हैं, कि जिनको फिर बाद में अफसोस नहीं होता। तो ज़रूरत है इस बात की कि अब बच्चे घर बैठे हैं, इम्तिहानात भी मुलतवी हैं, तो माँ क्या करे? माँ को अपने बच्चे को टाइम देना है, सुनहरी मौका है, दीनी तालीम का भी, दुनियावी तालीम का भी। उनकी अखलाकी ज़रूरियात पूरी कीजिए, उनकी बढ़ती हुई उम्र के जो जज्बात हैं उसको मेंटेन कीजिए, अपने बच्चों को अपने दोस्त और सहेलियां बनाइए, अपना दुख सुख उनके साथ रखिए, रमज़ान से पहले घर की सफाई कीजिए, दिल की सफाई कीजिए, कि कल बच्चे कह दें कि ये गोल्डन टाइम था हमारी ज़िंदगी का जिसमें हम आए। अल्लाह करे कि हम सब इन सारी चीज़ों से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें और बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। तो जज़ाकअल्लाह खैर, वसन जज़ा।